ओम शांति। सुबह का समय, इस सत्र में हम राजयोग मेडिटेशन के बारे में सीखेंगे और राजयोग मेडिटेशन के तीन स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप है कि स्वयं को जानना, स्वयं की पहचान, जो अभी के सेशन में हम समझने की कोशिश करेंगे। सेकंड स्टेप है परमात्मा का निजी परिचय, क्योंकि इतने सारे आइडेंटिटीज हम भगवान के लिए बताते हैं, लेकिन सभी का कहना यही है कि परमात्मा एक है, गॉड इज वन। तो वो परमात्मा एक कौन है, उनकी आइडेंटिटी क्या है, उसके बारे में समझना भी जरूरी है, क्योंकि उनके साथ कनेक्शन जोड़ना है। और तीसरा स्टेप है कनेक्शन किस रीति से जोड़े। अभी तक जो परमात्मा को याद करते आए हैं, उससे भिन्न अभी किस रीति से कनेक्ट करना है, वो है थर्ड स्टेप। तो ये राजयोग की विधि है, लेकिन राजयोग है क्या? योग का मतलब है जोड़, कनेक्शन, कम्युनिकेशन। वियोग का अर्थ है अलग होना, बिछड़ना, सेपरेट हो जाना। तो योग हम दिन भर किसी ना किसी व्यक्ति को या वस्तु को याद करते आए हैं, करते रहते हैं, है ना? तो उनके साथ हमारा कनेक्शन जुड़ रहा है। तो वैसे तो सभी जो इंसान है वो योगी है ही है, क्योंकि किसी ना किसी व्यक्ति को या वस्तु को निरंतर हम याद करते हैं दिन भर। लेकिन यहां योग कनेक्शन किसका, किसके साथ? क्योंकि अभी तक जो याद करते आए व्यक्ति और वस्तु को, उससे आत्मा सशक्त नहीं होती है, उससे आत्मा एलिवेटेड नहीं हो जाती या फिर सतो प्रधान नहीं बन जाती है। कहीं ना कहीं डिप्लीट होना शुरू हो जाता है मेटीरियल या फिर व्यक्ति के साथ कनेक्शन जोड़ने से। यहां जब हम परमात्मा के साथ कनेक्शन जोड़ते हैं तो आत्मा सशक्त हो जाती है। आत्मा के अंदर परमात्मा की जो शक्तियां और गुण हैं वो महसूस करने लगते हैं। तो इसीलिए ये कनेक्शन जोड़ना बहुत जरूरी है। और इस कनेक्शन से हम अपने ही कर्मेंद्रियों पर राज्य कर सकते हैं, इसीलिए इसको राजयोग कहते हैं। दूसरों को एडवाइस करना, दूसरों को सजेस्ट करना कि आपको ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, कहना बहुत इजी है, लेकिन खुद की बारी जब आता है ना तो अनेक बहाने ढूंढते हैं, अनेक एक्सक्यूजेस बताते हैं कि इसके कारण से ऐसा हुआ, इसने गुस्सा, उसने झूठ बोला ना तो इसलिए गुस्सा आया। वैसे तो मुझे गुस्सा नहीं आता है, लेकिन उसने झूठ गलत किया ना, झूठ बोला ना तो इसलिए, कोई ना कोई बहाने, अपने ही गलत कर्मों के लिए कुछ ना कुछ एक्सक्यूजेस देना शुरू करते हैं, क्योंकि अपने ही कर्मेंद्रियों पर राज्य करना, कंट्रोल करना सबसे मुश्किल काम है, है ना? जो देखना चाहे वही देखे, जो सुनना चाहे वही सुने, जो बोलना चाहे वही बोले। कर्म कर लेने के बाद हम कई बार पछताते हैं, अरे उस समय थोड़ा सा धीरज धर लेते तो ठीक हो जाता था। यही राजयोग है। राजयोग का अभ्यास करने के लिए जो पहला स्टेप है सेल्फ आइडेंटिटी, मैं कौन हूं, इसका उत्तर क्या है। जो बहन अभी अपना परिचय दे करके गए, जब भी हम किसी को अपना परिचय देते हैं कौन कौन सी बातें उस परिचय में आता है, अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए जब कहते हैं तो कौन कौन सी बातों के साथ आप इंट्रोड्यूस करते हैं अपने आप को, नाम, कहां से आए हैं और थोड़ा सा जोर से बोलेंगे तो सुनाई देंगे, आपके फैमिली के बारे में और पोजीशन, हाँ जी, ऑक्यूपेशन, क्वालिफिकेशन, है ना, इन सभी चीजों के साथ अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। हाँ, अपने पेरेंट्स कौन हैं, तो ये भी आइडेंटिटी देते हैं। तो ये सारी बातें जो हम आइडेंटिफाई करते हैं अपने आप के साथ, या फिर अपने नाम के साथ, नेशनलिटी के साथ, पोजीशन क्वालिफिकेशन के साथ, जेंडर और रिलीजन के साथ, और भी कई बातें हैं जिनके साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं। अभी सोचने की बात है, नाम किसने दिया, पेरेंट्स ने दिया, नाम देने से पहले भी आप मानो इस दुनिया में उपस्थित है, जन्म के कुछ दिनों के बाद ही आपको नाम मिलता है ना, तो नाम से पहले भी आप इस दुनिया में थे, और नेशनलिटी के साथ आइडेंटिफाई करने से पहले भी, बाद में समझ में आया मैं इंडियन हूं, अमेरिकन हूं, जो भी है, बाद में यह समझ में आता है कि मैं, मेरा देश कौन सा है, पोजीशन और क्वालिफिकेशन से पहले, पोजीशन क्वालिफिकेशन तो बाद में आता है, 22 साल के बाद कुछ क्वालिफिकेशन अपना मिलता है, डिग्री, कौन से डिग्री पूरा किया है उसके आधार से मेरा क्वालिफिकेशन हो जाता है, उसके बाद ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन हर 2 साल में वो बदलता जाता है, अपना पोजीशन बदलता जाता है। तो वो उसके पहले भी हम उपस्थित थे इस दुनिया में। रिलीजन तो जिस फैमिली में हम जन्मते हैं उसके साथ आइडेंटिफाई होता है अपना धर्म, और जेंडर, जेंडर तो केवल शरीर का है ना। ये सारी जो आइडेंटिटी जो हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं अपने आप के साथ, तो ये परमानेंट आइडेंटिटी है या टेम्पररी आइडेंटिटी है, परमानेंट आइडेंटिटी या टेम्पररी आइडेंटिटी है। एक दिन ये सब छूट जाएंगे अपने अपने से। फैमिली मेंबर्स जिनके साथ हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, मेरे पेरेंट्स कौन है, मेरे स्पाउस कौन है, मेरे चिल्ड्रन बच्चे कौन है, तो जिनके साथ हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, मैं फलाने की बीवी हूं या हस्बैंड हूं या फिर बच्चे हैं, तो वो जो रिलेशनशिप के साथ भी हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, वो लोग भी कभी ना कभी अपने से दूर होने वाले हैं, ये हकीकत है ना। तो जब अपने आप के साथ आइडेंटिफाई, इनके साथ आइडेंटिफाई करते हैं, वो चीजें हमसे दूर हो जाती है, तो फिर यहां खोखलापन महसूस होना शुरू होता है। जैसे कि आप मान लीजिए कोई भी एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है कोई कंपनी के, और उनको मान सम्मान, रेस्पेक्ट समाज में बहुत मिला, तो लंबे काल तक उस पोजीशन में रहे, और कुछ साल के बाद वो रिटायर्ड हो गए। रिटायर्ड होने के बाद वो खोखलापन क्यों अपने जीवन में महसूस हो रहा है उनको, क्योंकि अपने आप को उस पोजीशन के साथ आइडेंटिफाई इतने लंबे काल से करने के कारण से बहुत रेस्पेक्ट मिला, लोग सलाम ठोकते थे, बहुत इज्जत मिली, दरवाजा खुला जाता था, आते ही पानी मना दिया जाता, मना इतना रेस्पेक्ट के साथ उनको रेस्पेक्ट दिया जाता था। लेकिन जिस दिन उस पोजीशन से उतरे, उस दिन से जो सम्मान मिलता था समाज से, वो मिलना बंद हो गया। तो जो हम ले रहे थे, वो व्यक्ति ले रहे थे, उस पोजीशन के कारण से वो मिलना जब बंद हो जाता है, तो फिर यहां खोखलापन। इसीलिए कहते, इसीलिए आफ्टर रिटायरमेंट जो डिप्रेशन है तो वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है लोगों के अंदर, क्योंकि इतने गहराई से उस पोजीशन के साथ आइडेंटिफाई अपने आप को किया हुआ था। ऐसे ही कोई ना कोई रिलेशन के साथ, उस रिलेशन के साथ मैं आइडेंटिफाई किया है, मैं फलाना की बीवी हूं या फलाने के बच्चे, जो भी है, वो व्यक्ति अपने से दूर हो जाते हैं, तो एक प्रकार से शौक हो जाता है, और फिर यहां खोखलापन, क्योंकि वहां से मैं बहुत कुछ ले रही थी। तो ये सारे टेम्पररी डिपेंडेंसी है अपने जीवन का, कहीं ना कहीं वो दूर होना जरूर है। तो फिर रियल आइडेंटिटी क्या है, निजी पहचान अपना कौन सा है, क्योंकि ये सब कुछ एक दिन कटने वाला है, दूर हो जाने वाला है ना, या फिर दूर हो जाएगा, या फिर उन चीजों से मुझे सुख नहीं मिलना, दुख मिलना शुरू हो जाता है। और ये भी अगर कहे ठीक है, ये सभी चीजें जो है बाहर की चीजें, तो उससे तो अपना आइडेंटिफाई नहीं करते, कहीं बार अपने इस शरीर के साथ आइडेंटिफाई करते हैं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, तो इस शरीर के साथ हम आइडेंटिफाई करते हैं। क्यों? क्योंकि यही चीज दिखाई देता है। जब हम दर्पण में देखते हैं, मिरर में देखते हैं अपने आप को, यही चेहरा दिखाई देता है। इसीलिए अपने आप को इसी चीज के साथ, इसी शरीर के साथ आइडेंटिफाई करते हैं। लेकिन जब हम कहते हैं ये आंख, या आंख मैं हूं, या मेरी आंख है, या हाथ मैं हूं, या मेरे हाथ है, पैर मैं हूं, या मेरे पैर हैं, क्या कहते हैं, मैं हाथ, मैं पैर, मैं आंख, मैं कान, मैं ये नहीं कहते हैं, मेरी या मेरा कहते हैं ये शरीर को। जब मेरा ये है तो मैं कौन हूं, है ना। जैसे बातों में ये बात आती है, लेकिन गहराई से इसके बाद हमने सोचा नहीं है गहराई से ये है क्या चीज। क्योंकि जब कोई भी शरीर छोड़ता है, कोई मृत, किसी का मृत्यु हो जाता है, वो शरीर तो इंटैक्ट है, वहां आंख, कान, नाक, शरीर, सब कुछ, ऑर्गन, सब कुछ ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। सब कुछ ठीक ठाक दिखाई देते हुए भी हम ये कहते हैं ये व्यक्ति हमसे दूर चले गए, स्वर्ग पधार गए, परमात्मा के प्यारे हो गए। ये शब्द हम यूज क्यों करते हैं, शरीर को, शरीर तो दिखाई दे रहा है, लेकिन वो व्यक्ति हमसे दूर चले गए। कौन सी चीज है इस शरीर में जो थी वो हमसे दूर चली गई, आत्मा, आत्मा कहे, प्राण कहे, या फिर एनर्जी कहे, जो शक्ति थी उस शरीर के अंदर, उस शक्ति के साथ हम आइडेंटिफाई करते थे, उस शक्ति के साथ, उस एनर्जी के साथ हम संबंध जुड़े हुए थे। लेकिन जैसे ही वो एनर्जी शरीर से, प्राण चला गया, वो फिर उस शरीर को हम घर में 3 दिन भी हम रखते नहीं है। भले कितना भी उस व्यक्ति से प्यार करते हैं, लेकिन 3 दिन से ज्यादा हम उस शरीर को घर में रखते नहीं है। जब जिंदा थे तब उसके नाम से हम पुकारते थे, लेकिन जैसे ही आत्मा निकल गई तो फिर उसको क्या नाम देते हैं, बॉडी। बॉडी को यहां ले आइए, बॉडी को ले जाना है, बॉडी कह करके हम संबोधन करते हैं, या फिर हिंदी में कहे अर्थी कहते हैं। अर्थी को लेके आए हैं, अर्थी माना रति के बिना जो रथ है वो है अरति, है ना। तो वो अरति हो गया, रति कौन था फिर? रति आत्मा थी जिसको, जो वो चैरिएटर जो है रति, इस रथ को चलाने वाली आत्मा थी। इसको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। वैसे तो हम सभी जानते ही हैं, भारत में जब रहते हैं, इंडिया में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं चलते फिरते घर में ये बातें उठती है, या फिर ये शब्दों में ये आता ही है, ये आत्मा है, आत्मा निकल गई, कहीं ना कहीं हम सुनते हैं। लेकिन क्या फिर हम हर घड़ी हम उसको महसूस करते हैं, या वो समझते हुए हम कर्म करते हैं? उसका एहसास कब ज्यादा हो जाता है? जब किसी का मृत्यु होता है, स्मशान यात्रा में चलते हैं, तो फिर आकर के उस स्मशानी वैराग्य आ जाता है। एक दिन हम सबको जाना है, जिंदगी इतना ही है। स्मशानी वैराग्य आता है, दो चार दिन थोड़ा बहुत उस मूड में रहते हैं और अच्छा कर्म करने की कोशिश करते हैं, और बहुत लंबा सोचने की कोशिश करते, लेकिन तीन चार के दिन के बाद फिर वही के वही। दिन भर जो हम कर्म करते हैं, किसके लिए कर्म करते हैं? शरीर निर्वाह अर्थ के लिए कर्म करते हैं। जो खाना पीना सोना कमाना पैसा कमाना जो भी हम कर रहे हैं, विस्तार कर रहे हैं अपने लाइफ के, भौतिकता का विस्तार जो कर रहे हैं, वो किसके लिए कर रहे हैं? किसके लिए कर रहे हैं? शरीर के देखभाल के लिए। दो रोटी, रोटी कपड़ा मकान के लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन एक दिन ये स्थूल शरीर जो इन आंखों से दिखाई दे रहा है, वो एक दिन हमें छोड़ के जाना होगा। तो इसलिए कहते हैं ना, क्या लेके आए थे और क्या ले जाना है। क्या लेके आए थे हम? कुछ नहीं लेके आए थे, कुछ तो लेके आए होंगे। क्या लेके आए थे और क्या ले जाना है? इन स्थूल चीजों को तो हम लेके नहीं आए थे, और जो भी हम विस्तार कर रहे हैं सब कुछ यहां छोड़ के जाना होगा। लेकिन लेके क्या जाना है? कर्म, अच्छे या बुरे कर्म जो मैंने किया हुआ है, वो कर्म मैं लेके जाऊंगी। तो वो हमेशा वो अच्छा कर्म करने के लिए मुझे समझ होनी चाहिए मैं कौन हूं, और मुझ आत्मा की शक्तियां कौन सी हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। तो इसलिए कहते हैं आत्मा एक अनादि अविनाशी शक्ति है, जो भ्रुकुटी के बीच में, जो ब्रेन के बीचों बीच यहां उपस्थित होती है, वहां उपस्थित होते हुए पूरे शरीर का कंट्रोल वहां रहते हुए वह आत्मा करती है। तो आत्मा वहां है, यहां भ्रुकुटी के बीच में, कैसे हम सिद्ध करेंगे? वैसे तो कोई लेबोरेटरी में सिद्ध करने की बात नहीं है, लेकिन जब लोकली जो हम बातें करते हैं, जब भी हम मंदिर जाते हैं तो क्या करते, तिलक यहां लगाते, यहां वहां कहीं और लगाते हैं, कहीं और नहीं लगाते, तिलक यहां ही लगता है, चाहे चंदन का तिलक, चाहे वो कुमकुम का तिलक, जो भी है यहां लगाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पता है आत्मा यहां विराजमान है। और जब भी भाग्य की बात करते हैं, मेरा भाग्य ही ऐसा है, हाथ ऑटोमेटिकली यहां चला जाता है, तो क्या यहां भाग्य लिखा हुआ नजर आता है किसी का? किसी का नजर आता है यहां भाग्य लिखा हुआ? हाँ, नहीं नजर आता है। लेकिन भाग्य शरीर का भाग्य नहीं है, वह आत्मा का भाग्य है। आत्मा जो कर्म किए हुए हैं तो उसका ही रिजल्ट है भाग्य या दुर्भाग्य। इसीलिए कहते हैं पापात्मा, पुण्यात्मा, देवात्मा, धर्मात्मा, कर्म के आधार से आत्मा का आइडेंटिफिकेशन होता है। भाग्य आत्मा का है, इसीलिए यहां हम ऑटोमेटिकली हम आइडेंटिफाई करते या फिर हाथ वहां चला जाता है। और तीसरी बात यह है, हमेशा ये कहते हैं फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड, और स्पेशली फेस में भी आंखों को देखते ही पता चलता है कि इस व्यक्ति का आज मूड कौन सा है, मूड क्या है। आंखों से ज्यादा हम एक्सप्रेस करते हैं अपने मूड का, अपने विचारों का, अपने भावनाओं का। तो यहां क्यों आंखों से क्यों, क्योंकि आत्मा से नजदीक का जो नजदीक का ऑर्गन है ये है आंख। तो इसीलिए आत्मा की जो भावना है वो आंखों से बहुत इफेक्टिवली हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसीलिए और ये जो ब्रेन के बीचों बीच जो पिट्यूटरी ग्लैंड है तो वहां आत्मा विराजमान होकर के पूरा शरीर का कंट्रोल करती है। जैसे कार में ड्राइवर कहां बैठता है, कार में ड्राइवर कहां बैठता है, जहां स्टीयरिंग है, ब्रेक है, गियर है, जहां कंट्रोलिंग पॉइंट्स है, तो वहां ही ड्राइवर को बैठना होता है। ड्राइवर बाजू वाले सीट में या फिर पीछे वाले सीट में बैठ करके ड्राइव नहीं कर सकता है। ऐसे ही शरीर के कंट्रोलिंग पॉइंट्स कहां है, ब्रेन है। ब्रेन में आत्मा विराजमान होकर के पूरे शरीर का कंट्रोल करना जरूरी है। वैसे तो हर नर्व में, हर कण में वो महसूस होता है, प्राण का महसूस होता है, क्योंकि बॉडी डेड बॉडी जब बन हो जाता है तो फिर कहीं भी कुछ करो उसको फीलिंग नहीं आता है, दर्द नहीं होता है। दर्द किसको महसूस हो रहा है, आत्मा को। तो इसलिए प्राण तो पूरा शरीर में है लेकिन एक जगह पर बैठ करके कंट्रोल करना जरूरी है। इसीलिए कहते हैं आत्मा अजर अमर अविनाशी है जिसका कोई मृत्यु नहीं है। मृत्यु किसका है, मृत्यु किसका है, शरीर का है। शरीर नश्वर है, शरीर अंतर हो जाता है बचपन से लेकर के वो फिर चेंज होते 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 एक दिन शरीर को छोड़ना पड़ता है, क्योंकि शरीर नश्वर है, केवल एक कॉस्ट्यूम है। इसीलिए दोनों अलग अलग चीज है, एक है आत्मा और दूसरा है शरीर। इन दोनों को मिलाकर के ह्यूमन बीइंग बना। ह्यूमन माना जो ये बायोलॉजी है शरीर का, जो बोन्स, नर्व्स, मसल्स, ब्लड, जो ये शरीर की एनाटॉमी है वो है ह्यूमन। और बीइंग माना चैतन्य शक्ति, जो इस शरीर को प्राण देने वाली चैतन्य शक्ति आत्मा। इन दोनों का मिलन, आत्मा और शरीर का मिलन जब होता है इसको कहते हैं जन्म। आत्मा का शरीर से बिछड़ना इसको कहते हैं मृत्यु। तो हमारा जो लाइफ टाइम है जन्म से लेकर के मृत्यु तक, इस शरीर एक ही शरीर के साथ है, हम जन्म से लेकर के मृत्यु तक इस शरीर के साथ है। तो इसीलिए इस शरीर के साथ मुझ आत्मा का गहरा कनेक्शन होता है। किसी और के साथ हमारा इतना गहरा कनेक्शन नहीं होगा, भले हम कहते हैं हम इसको बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वास्तविकता ये है उस व्यक्ति से भी ज्यादा प्यार मैं अपने आप को करती हूं। क्यों? क्योंकि आत्मा का इस शरीर के साथ इतना लंबा कंपेनियनशिप है, जन्म के दिन से लेकर के मृत्यु के दिन तक, उस क्षण तक मेरा कंपेनियनशिप आत्मा का शरीर के साथ है। है ना, इसलिए अपने साथ बहुत ज्यादा हम अपने को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, ये रियलिटी है, इसके साथ अटैचमेंट है। लेकिन इसको समझना, ये दोनों अलग अलग है। आत्मा एक चैतन्य शक्ति है लेकिन शरीर नश्वर है, जैसे सीप और मोती है। सीप का कोई वैल्यू नहीं है जब तक वो मोती वहां नहीं है। सीप का भी है, सीप के बिना मोती नहीं बनता, लेकिन इसका ज्यादा वैल्यू किसका है? मोती का है। ऐसे ही ड्राइवर और कार का, भले कितने भी एक्सपेंसिव कार क्यों ना हो, कितने भी करोड़ों रुपयों का कार क्यों ना हो, लेकिन अगर वो ड्राइवर ड्राइव नहीं करता रोड पर, उसका वैल्यू कुछ नहीं है, है ना। ऐसे ही घर और ओनर का है। घर के बारे में कहते हैं तो ये फलाने व्यक्ति का घर है, वो व्यक्ति और घर अलग अलग है, एक नहीं है, व्यक्ति उस घर में रहते हैं। ऐसे ही मैं आत्मा ओनर हूं, ये शरीर मेरा मकान है, मैं आत्मा ओनर इस शरीर रूपी मकान में रहती हूं। आत्मा रति शरीर रत है और आत्मा रति है ना। ऐसे ही मेरा ये राज्य है, शरीर मेरा राज्य, इस राज्य में अलग अलग आंख कान नाक ये सारे कर्मेंद्रिया मेरे राज्य है, मैं आत्मा राजा हूं। जैसे आत्मा सिम है, ये शरीर मेरा सिम है, मेरा मोबाइल है, आत्मा प्रोग्रामर है, बॉडी मेरा रोबोट है ना। रोबोट किस लिए? क्योंकि जिस आत्मा जो मैं सोचती हूं, मैं हाथ, मुझे हाथ उठाना है तो हाथ उठता है, मैं सोचती हूं कि अभी कि मुझे उठ करके चलना है तो ये शरीर उठ करके चलना शुरू होता है। तो इसकी शरीर को प्रोग्रामिंग कौन देता है? आत्मा देते। जैसे जैसे मैं आत्मा सोचती हूं वैसे वैसे ये शरीर करने लगता है। तो इसीलिए ये समझना बहुत जरूरी है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो इसीलिए आत्मा इस शरीर के कंट्रोलर है, कंट्रोलर ऑफ 5 सेंस ऑर्गन्स। जो मैं देखना चाहूं वही देखूं, जो सुनना चाहूं वही सुनूं, जो बोलना चाहूं वही बोलूं, ये सभी कर्मेंद्रियों के मालिक मैं आत्मा हूं। तो आत्मा के निजी क्वालिटीज कौन कौन सी है? नेक्स्ट बात यह है कि कई बार हम ये कहते हैं, जब भी मुझे गुस्सा आता है या फिर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं या फिर कुछ ऐसे संस्कार मैं अपने अंदर है, तो मैं इस बोलने में आ जाता है कि मेरा ये संस्कार ही ऐसा है, मैं हूं ही ऐसे, मेरा नेचर ही ऐसा है, राइट? तो ये मेरा नेचर, अपना नेचर नेगेटिव है या पॉजिटिव है, अपना संस्कार गुण पॉजिटिव है या नेगेटिव है, आपका क्या कहना है? क्यों नेगेटिव जो है, जो गुस्सा है, लालच है, लोभ है, घृणा है, द्वेष है, तो ये सारे जो नेगेटिविटीज है जो अपने बिहेवियर में हम दिखाते हैं, अपने व्यवहार में हम दिखाते हैं, क्या आत्मा का ओरिजिनल नेचर ये सारे नेगेटिविटीज है या पॉजिटिविटी है? क्या कहेंगे? पॉजिटिविटी है। तो फिर नेगेटिविटी क्यों दिखाई देता है अपने व्यवहार में? क्यों दिखाई देता है अपने व्यवहार में? क्यों दिखाई देता है? लैक ऑफ नॉलेज और नेगेटिविटी क्यों दिखाई देता है? कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। जैसे मान लीजिए मैं सुबह सुबह उठ करके नहा धो करके फ्रेश कपड़ा पहनती हूं, सफेद व्हाइट कपड़ा, पूरा साफ है, धुले हुए, आयरन किया हुआ, बहुत कड़क, बहुत अच्छा। फिर उठ करके फिर बाहर जाती हूं, शॉपिंग करना है, कहीं काम करना है, मार्केट में कहीं जाना है, चल के फिरते सारा कुछ घूम करके शहर में, फिर मैं रात को जब पहुंचती हूं, मेरा कपड़ा कैसा होगा, मेरा कपड़ा कैसा होगा, कैन आई एक्सपेक्ट सुबह जैसे मैंने पहना था वैसा ही होगा रात को, ऐसा मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूं? नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं पोल्यूशन है, धूल है, मिट्टी है, किचड़ा है, जो भी है कुछ लग जाता है, गाड़ी में बैठते उठते ग्रीस लग गया, कुछ भी लग गया तो ये गंदा हो ही जाता है। ऐसे ही आत्मा का जो ओरिजिनल क्वालिटी है वो शुद्ध है, पॉजिटिव है, लेकिन कर्म करते करते, जन्म पुनर्जन्म लेते 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 कहीं ना कहीं हमें दाग लग ही जाता है, नेगेटिविटी ले ही लेते हैं, ग्रहण कर ही लेते हैं। तो फिर रात को जब मैं दाग देखती हूँ, गंदा देखती हूँ अपने कपड़े को, और ये मैं स्वीकार कर लूँ ये जो गंदगी लगी हुई है ना मेरे कपड़े पर, ऐसा ही था ये, मैं ये कपड़ा ऐसा ही था, तो अगर मैं उसको वैसे ही स्वीकार कर लूँ तो क्या करूंगी, उसको धोने की मेहनत नहीं करती। अगर मुझे पता है डिफरेंस, सुबह जब मैंने पहना था यहां ये दाग नहीं था, अभी दाग लगा हुआ है, ये दाग है, ये ओरिजिनल नहीं है, ऐसा नहीं था, तो इसीलिए फिर मैं धुलाई करने की मेहनत करूंगी, है ना। ऐसे ही जब मैं ये स्वीकार लेती हूं आत्मा के जो अवगुण है, मैं आत्मा हुई ऐसे अवगुणों सहित मैं हूं, जब स्वीकार कर लेती हूं तो फिर उसको चेंज करने की मेहनत, परिवर्तन करने की मेहनत मैं करूंगी नहीं। लेकिन जब मुझे यह पता है कि मैं आत्मा शुद्ध हूं, मैं आत्मा पॉजिटिव हूं, तो फिर जब भी अवगुण दिखाई देता है लगता है कि यह मेरी चीज नहीं है, उसको साफ करने की मेहनत मुझे करना पड़ेगा। थोड़ा बहुत गुस्सा आया तो फिर रियलाइजेशन हुआ मैं आत्मा गुस्से वाली नहीं हूं, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। जब ये मुझे पता है तो उसको फिर निकालने की मेहनत हम करते हैं। लेकिन निकालेंगे कैसे, निकालेंगे कैसे, जब हम ये कहते हैं कि गुस्सा निकल जाओ, गुस्सा नहीं करना है, गुस्सा नहीं करना है, गुस्सा नहीं करना है, तो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, गुस्सा ज्यादा आ जाएगा। एटलीस्ट रियलाइजेशन तो है ना कि गुस्सा आ रहा है करके, ये ठीक नहीं है, रियलाइजेशन तो है, लेकिन फिर ये रिपीट कर रही हूं मन में, मुझे गुस्सा नहीं करना है, गुस्सा नहीं करना है, गुस्सा नहीं करना है, तो क्या होगा, क्या होगा, निकल जाएगा, निकल जाएगा। जैसे अगर आपको कहे कि अगले 30 सेकंड में, मिनट भी नहीं, सेकंड, आधे मिनट में, अगले 30 सेकंड में आपको बंदर को याद नहीं करना है, क्या याद आया, किसी का लाल मुंह, किसी का काला मुंह, किसी का छोटा बंदर, किसका बड़ा बंदर, है ना, अलग अलग चित्र आंखों के सामने, बुद्धि के सामने आ जाता है। लेकिन इंस्ट्रक्शन क्या था, नहीं याद करना है। ऐसे ही जब हमको कहते हैं नहीं नहीं नहीं, वो ज्यादा आता है, मन सोचता है चित्रों में, पिक्चराइजेशन होता है, हर चीज का पिक्चराइजेशन होता है मन में, है ना। बंदर का चित्र है लेकिन नहीं शब्द का कोई चित्र नहीं है, तो इसलिए कोई भी सेंटेंस में ये नेगेटिव शब्द आएगा, नहीं, नो, नॉट, न, जो भी है वो नेगेटिव माना जाएगा। इसीलिए जो भी चीज चाहिए उसके बारे में सोचना है, जो भी चीज नहीं चाहिए उसके बारे में सोचना नहीं है। बहुत सिंपल लॉजिक है ना। जैसे अगर इस कमरे में अगर अंधेरा है, अंधेरे को कैसे मिटाएंगे, अंधेरे को भगाएंगे कैसे? अगर ये कहे कि अंधेरा भाग जाओ, अंधेरा भाग जाओ, अंधेरा चले जाओ, तो चला जाएगा अंधेरा? नहीं, उसके एक छोटा सा दिया जलाया, टॉर्च जलाया, कैंडल जलाई, लाइट जलाया, जो भी प्रकाश का कोई भी एक सोर्स लेके आए, अंधेरा मिट गया, है ना। तो अंधेरे का अस्तित्व क्या है? What is the definition of darkness? अंधेरे का अस्तित्व क्या है? Absence of light. रोशनी का ना होना, प्रकाश का ना होना अंधेरा है। और प्रकाश क्या है? लाइट क्या है? लाइट क्या है? अंधेरे का ना होना प्रकाश है? नहीं, क्यों नहीं है? अंधेरे का ना होना प्रकाश है, क्यों नहीं है? अगर हां तो क्यों है, क्या कहेंगे? अंधेरे का ना होना प्रकाश नहीं है, क्यों? क्योंकि प्रकाश का सोर्स है ना, सन है, सूरज है, या फिर दिया है, लाइट है, जो भी प्रकाश का सोर्स है। लेकिन अंधेरे का सोर्स कहाँ है? यहां से मुझे अंधेरा मिल रहा है, ऐसा कहेंगे? इस व्यक्ति, इस चीज से मुझे अंधेरा मिल रहा है, ये नहीं कहेंगे। अंधेरा का की परिभाषा क्या है? प्रकाश का ना होना अंधेरा है। जब सूरज ढल जाता है तो अंधेरा हो जाएगा, जब सूरज उगेगा तो फिर प्रकाश हो जाएगा। तो लाइट इज एनर्जी, अंधेरा एनर्जी नहीं है। ऐसे ही पॉजिटिविटी एनर्जी है, नेगेटिविटी इज एब्सेंस ऑफ पॉजिटिविटी है, बस, है ना। नेगेटिविटी में कोई एनर्जी नहीं है, वो केवल खालीपन है वहां, है ना। गुस्सा क्यों आ रहा है? शांति की कमी के कारण से गुस्सा आ रहा है, उसका परसेंटेज मुझे आत्मा के अंदर कम हो गया, इसीलिए गुस्सा आ रहा है। जैसे ही शरीर में पानी की मात्रा 75-78% पानी का परसेंटेज होगा, पानी का परसेंटेज कम होते ही मुझे प्यास लगने लगता है। जब पानी पीती हूं तो फिर वो परसेंटेज बराबर होने के कारण से फिर से वो ठीक हो जाता है, है ना। ऐसे ही आत्मा के अंदर ये सातों ही गुण ओरिजिनल है, निजी है, अपना है ये सातों ही गुण। इन सातों ही गुणों में परसेंटेज जब कम हो जाता है ना, तो फिर उसका विपरीत अवगुण महसूस होता है। जैसे रेनबो में सात रंग बताते हैं, व्हाइट में सातों ही रंग समाये हुए हैं, ऐसे ही आत्मा में ये सातों ही गुण अपना ओरिजिनल है। जैसे पवित्रता है, स्नेह है, प्यार है, खुशी है, शांति है, शक्ति है, ज्ञान है, आनंद है। इन कोई भी गुणों में थोड़ा कम हो जाए तो हमें अच्छा नहीं लगता। अगर आपको कोई स्नेह न दे, नफरत करे, अच्छा लगता है? हमें प्यार चाहिए हर एक आत्मा से, निस्वार्थ स्नेह की अपेक्षा आत्मा को रहती है। खुशी पसंद है, सुख पसंद है, दुख पसंद है किसी को? दुख पसंद है? मुझे, हे भगवान मुझे दुख दे दो, ऐसा कोई कहते हैं? नहीं, हे भगवान मुझे सुख दो, है ना। सुख मांगते, सुख की अपेक्षा रखते हैं, शांति की अपेक्षा रखते हैं, शक्ति की अपेक्षा रखते हैं। शक्ति की परिभाषा भले हम अलग कर देते हैं, पावर मना कोई पोजीशन का पावर, पॉलिटिकल पावर, वो इन्फ्लुएंस का पावर हम मांग समझते हैं, लेकिन वास्तव में आत्मा की दृढ़ता है जो है, अच्छे राह पर चलने की जो क्षमता है, शक्ति है, तो वो है आत्मा की निजी शक्ति। और ज्ञान और आनंद, ये सभी गुण आत्मा के ओरिजिनल गुण हैं। तो इसमें जब कमी हो जाती तो क्या होता, ज्ञान में कम हो जाता है, ज्ञान में कमी हो जाती है तो डाउट्स क्लियर होता है, या डाउट्स पैदा हो जाते हैं, या फिर ब्लाइंड फेथ, अंधश्रद्धा आत्मा के अंदर, या फिर ईगो आ जाते हैं। ज्ञान सचमुच को ज्ञानी आत्मा है, ज्ञानी व्यक्ति है, उसके अंदर अहंकार नहीं होगा, है ना। ज्ञान की कमी के कारण से अहंकार भी आ जाता है, जैसे प्यूरिटी की कमी है तो ये सारे व्यर्थ चीजें, व्यर्थ बातें, गंदी बातें, ये सारे सोच आत्मा के अंदर, सोच और कर्म में आना शुरू होता है। स्नेह की कमी, प्यार की कमी होगा तो फिर सेल्फिशनेस, स्वार्थ भावना, जहां प्यार है वहां देने की भावना होती है, स्वार्थ भाव वहां ज्यादा हो जाता है जहां प्रेम कम हो। शांति कम हो जाता है तो गुस्सा, डर और ये टेंशन बढ़ जाता है। और सुख जब कम हो जाता है तो फिर ग्रीडीनेस, लोभ, लालच, मुझे सुख चाहिए ना, तो यहां से शायद मुझे सुख मिलेगा, यहां से सुख मिलेगा, वो लालच, मुझे सारे चीज इकट्ठा करने से शायद मुझे सुख मिलेगा, तो ये फिर लालच लोभ बढ़ता जाएगा। आनंद की कमी जब होता है तो फिर ग्लूटनी माना, जैसे जरूरत से ज्यादा खाते हैं, जरूरत से ज्यादा, जब डिप्रेशन में होते हैं ना तो है ना, जरूरत से ज्यादा इंडल्ज होते हैं, तो ये है ग्लूटनी। अटैचमेंट्स बढ़ जाते हैं तो आनंद कम हो जाता है। शक्ति की कम, आत्मा के अंदर शक्ति की कमी होता है तो फिर क्या होगा, मस्कुलर, हम सोचते हैं कि मुझे दिखाना पड़ेगा, मस्कुलर पावर दिखाना पड़ेगा, रोब दिखाना पड़ेगा, दूसरों को डांट के दिखाना पड़ेगा मैं कितना बलशाली हूं, दूसरों को दबा करके अपने आप को शक्तिशाली मैं दिखाते हैं। ये सारे बातें इन गुणों की कमी के कारण से होता है। तो इसीलिए इन गुणों को हम पुनः वापस हम कैसे लेकर आए, पुनः हम ओरिजिनल उन गुणों को महसूस कैसे करें। नेक्स्ट बात है कि इन कर्मेंद्रियों के द्वारा हम इन गुणों को फिर से हम महसूस कर सकते हैं। जैसे शरीर में अलग अलग कर्मेंद्रियां हैं, आंख है, कान है, नाक, कर्मेंद्रियां हैं, ऐसे ही आत्मा के 3 कर्मेंद्रियां हैं, वो है मन, बुद्धि और संस्कार। मन के इसमें देख रहे हैं आप, वो वेव्स की तरह है या लहरों की तरह वो दिखाई दे रहा है। जैसे सागर में लहर एक के बाद एक आता है, ऐसे ही मन में एक विचार के पीछे दूसरे विचार लगातार आते हैं, है ना। जैसे आप यहां बैठे हैं, भले आप सुन रहे हैं, लेकिन कभी कभी सुन भी रहे हैं, कभी कभी विचार दूसरे भी चल रहे हैं, यहाँ का, वहां का, घर का, बच्चों का, परिवार का, यहाँ मतलब बहुत सारे विचार भी चल रहे हैं, बीच बीच में सुन भी रहे हैं। माना मन में लगातार सागर की लहरों की तरह विचारों की लहर लगातार आते जरूर है। तो जिससे हम सोचते हैं, विचारों की उत्पन्न करते हैं वो है अपना मन। बुद्धि से, जब बुद्धि में दिखा रहे हैं, वो तराजू है, बुद्धि में हम निर्णय करते हैं, डिसाइड करते हैं, एनालाइज करते हैं। और तीसरी बात है इंप्रेशंस या संस्कार जिसको हम कहते हैं, जो हमने निर्णय लिया उस रीति से हम कर्म करते हैं, कर्म जैसे जैसे रिपीट होता जाएगा वैसे वैसे वो संस्कार पक्का होता जाएगा, है ना। संस्कार कैसे बनता है, कर्म जब रिपीट होना शुरू होता है वो संस्कार पक्का हो जाता है। तो इसलिए एक एक चीज हम अभी समझने की कोशिश करते हैं। मन, मन में विचारों की उत्पत्ति होती है, मतलब वी क्रिएट थॉट्स इन अवर माइंड। किस आधार से हम थॉट्स क्रिएट करते हैं? सेंसरी इनपुट्स होते हैं, मतलब किसी को देखा, किसी चीज को देखा, किसी चीज को सुना, उसके आधार से विचार आना शुरू होता है। बिलीफ सिस्टम्स, हमारे मान्यताओं के आधार से हम सोचते हैं, पास्ट मेमोरीज के आधार से हम सोचते हैं, अपने ही क्रिएटिविटी होता है उसके आधार से हम सोचते हैं। तो ये सारे इनपुट्स है सोचने के लिए। लेकिन मन में हम अक्सर करके चार प्रकार के विचार क्रिएट करते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, वेस्ट और नेसेसरी। पॉजिटिव सकारात्मक सोच किसको कहते हैं? आजकल ये ट्रेंड चला है ना, पॉजिटिव सोचो, बी पॉजिटिव, सकारात्मक रहो। तो बी पॉजिटिव माना सकारात्मक सोचना माना क्या है? पॉजिटिव थॉट्स माना क्या है? वैसे तो कहते हैं पॉजिटिव रहो, लेकिन पॉजिटिव है क्या चीज, क्या है इसके बारे में सोचा है? क्या है पॉजिटिव? सब अच्छा होगा, हाँ, हम खुश रहे, दूसरों को खुशी दे, और पॉजिटिव माना क्या है? किसी का बुरा ना करना, है ना। तो पॉजिटिविटी एनर्जी है, जितना पॉजिटिविटी बढ़ता है, जैसे सिंपल मैथमेटिक्स से एडिशन और सब्ट्रैक्शन, जितना पॉजिटिव एनर्जी बढ़ता जाएगा अपनी एनर्जी बढ़ता जाएगा, नेगेटिव थॉट्स जितना बढ़ता है अपनी एनर्जी कम होता जाएगा। तो पॉजिटिविटी माना सुखी रहना और दूसरों को सुख देना, है ना। ये सिंपल परिभाषा है, सुख देना और रिटर्न में सुख पाना, ये है पॉजिटिविटी। जितना हम दूसरों को देते जाएंगे उतना हम पॉजिटिव एनर्जी लेते जाएंगे। नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिविटी माना किसी का बुरा सोचना या किसी के लिए बुरा करना, है ना, दुख देना, किसी को दुख देना, ये है नेगेटिविटी। लेकिन यहां ये समझने की बात है, इंटेंशन इज मच मोर पावरफुल देन कर्म इटसेल्फ। जो भावना है कर्म करने के पीछे वो बहुत जरूरी है कर्म करने से ज्यादा। जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर ऑपरेशन करेंगे, दुख तो मिल रहा है पेशेंट को क्योंकि दर्द हो रहा है, दुख मिल रहा है, लेकिन वो डॉक्टर दर्द क्यों दे रहे हैं पेशेंट को? वो ठीक हो जाए, इंटेंशन क्या है दर्द देने के पीछे का, इंटेंशन क्या है, ये पेशेंट ठीक हो जाए, लंबे काल के लिए वो ठीक हो जाए। वर्तमान में थोड़े समय के लिए भले दर्द मिले कोई बात नहीं, लेकिन हमेशा के लिए वो पेशेंट ठीक हो जाए। तो कर्म से ज्यादा कर्म के पीछे वाली जो भावना है वो महत्वपूर्ण है। बच्चों को हम डिसिप्लिन करते हैं, थोड़ा सा डांटेंगे, थोड़ा सा ये करें, सख्त रहेंगे, क्यों? क्योंकि ये बच्चे बिगड़े नहीं, है ना। भले उस समय उस क्षण के लिए लगता है कि मैं दुख दे रहा हूं बच्चों को, लेकिन फिर लंबे काल के लिए सुख देने के लिए मैं अभी दुख देना जरूरी हो जाता है। इसीलिए सुख क्या है, दुख क्या है, पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है। और तीसरी बात है व्यर्थ सोच, वेस्ट थॉट्स। व्यर्थ सोच पॉजिटिव जितना अच्छा भी नहीं है और नेगेटिव जितना बुरा भी नहीं है। अनावश्यक सोचते रहना जैसे हम यहां बैठे हैं, तो अनावश्यक पास्ट के बारे में सोचना जिसके बारे में हम कुछ कर नहीं सकते हैं, अनावश्यक भविष्य के बारे में सोचना जिसके बारे में हम सोच कुछ कर नहीं सकते हैं, वो है व्यर्थ। जैसे वेस्ट जा रहा है, एनर्जी जा रही है। और नेसेसरी या आवश्यक सोच वो है जो अपने कर्म के प्रति, रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रति, अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर अपनी जिम्मेदारी के प्रति जो सोच है वो है नेसेसरी थॉट्स। यहां जाना है, वो फाइल सबमिट करना है, ये कर्म करना है, सब्जी खरीदना है, तो ये जो हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रति जो हम सोचते हैं वो है नेसेसरी थॉट्स। इन चारों ही प्रकार के विचारों में से ज्यादा विचार हम दिन भर क्या करते हैं, कौन सा करते हैं? नेसेसरी थॉट्स लगता है आपको? नेसेसरी थॉट्स करते हैं, आवश्यक सोच ज्यादा चलते हैं अपना, या वेस्ट थॉट्स, है ना? वेस्ट ज्यादा चलते हैं क्योंकि यहां बैठे बैठे अनावश्यक आप घर का बारे में सोच रहे हैं, या फिर जाकर के क्या करना है वो सोच रहे हो, तो कुछ कर पा रहे हैं यहां बैठे बैठे, कुछ कर नहीं पा रहे उसके बारे में, तो फिर सोच के क्या फायदा? उसके बजाय पूरा फोकस करें, वर्तमान में जो हो रहा है उसमें फोकस करेंगे तो कुछ प्राप्ति होगी। उसको छोड़कर के पास्ट या फ्यूचर के बारे में सोचते रहना, इससे कोई फायदा नहीं है। नेसेसरी थॉट्स वो है जो कर्म करना है, करने जाना है उसके बारे में सोचना, उसके बारे में कुछ कर नहीं पा रहे लेकिन सोच ही जा रहे हैं, ये है व्यर्थ, है ना? मेजॉरिटी हम व्यर्थ सोचते हैं। और फिर उसके बाद आता है नेगेटिव या पॉजिटिव, अपने पर्सनालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैं पॉजिटिव व्यक्ति हूं तो पॉजिटिव सोचती हूं, अगर मैं नेगेटिव व्यक्ति हूं तो हर परिस्थिति में मैं नेगेटिव सोचना शुरू करती हूं। तो इसीलिए ये बार बार अपने आप को देखना है, अपने मन को देखना है, मैं क्या सोच रही हूं उस पर ध्यान देना जरूरी है। व्यर्थ है तो उससे अपना मन निकाल करके फोकस करना है क्या जरूरी है, जिससे प्राप्तियां हो रही है उस पर हमें फोकस करने की जरूरत है। मेडिटेशन मन का दमन नहीं है। सोचते हैं ना, मन को एकदम ब्लैंक कर देना, यह है मेडिटेशन। कुछ ना सोचना, यह है मेडिटेशन नहीं है, क्योंकि कुछ सोच ही नहीं सकते, ऐसे हो ही नहीं सकता मन एकदम ब्लैंक हो। सागर, ऐसा कोई सागर देखा है आपने जिसमें लहर ना हो, एकदम शांत हो? कोई ऐसा सागर देखा है? हाँ, है ही नहीं है। अगर एकदम शांत है उसको लेक कहा जाता है या पौंड कहा जाता है, उसको तालाब कहा जाता है, है ना? सरोवर कहा जाता है, उसको सागर नहीं कहेंगे। सागर माना लहरें, ऐसे ही मन माना विचार क्रिएट होना, वो है मन। लेकिन ये लहरों की स्पीड कभी फास्ट हो सकता है, कभी स्लो हो सकता है, है ना? सागर में भी देखा होगा जब उछल खा रहा होगा कभी शांत होगा, है ना? ऐसे ही जितना पॉजिटिव रहेंगे मन की जो स्पीड है वो कम होगा, जितना नेगेटिव सोचेंगे मन का स्पीड ज्यादा होगा। और कंट्रोल करना कौन सा सहज है? अगर गाड़ी 120-150 पे जा रही है गाड़ी, उसको कंट्रोल करना सहज है, या फिर 40-50-60 में जा रही है गाड़ी उसको कंट्रोल करना इजी है? जो स्लो जा रही है गाड़ी उसको कंट्रोल करना इजी है। नेगेटिव, जो धम से नेगेटिव विचार आया उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। अगर मान लीजिए बहुत गुस्सा आ गया, जोर से गुस्सा आया, जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, उस समय आप कंट्रोल कर पाएंगे अपने आप को? बिल्कुल नहीं। अगर ये भी सोचे कंट्रोल करना है, कंट्रोल करना है, कंट्रोल करना है, तो भी जाकर के 5-10-15 मिनट के बाद वो शांत होगा। नेगेटिव विचारों को कंट्रोल करना मुश्किल है, इसीलिए आदत डालनी पड़ेगी कि पॉजिटिव, जितना पॉजिटिव सोचना शुरू करते चैनलाइज करना है। जब भी नेगेटिव विचार आया चैनलाइज करते, कैसे चैनलाइज करेंगे कि मैं आत्मा ओरिजिनली क्या हूं, अपने ओरिजिनलिटी में लेके जाएंगे बार बार, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, शांति, शांत स्वरूप आत्मा हूं, शांति के प्रकंपन में फैला रही हूं। ये बार बार जब हम अभ्यास करते हैं, फिर आप देखना 10 दिन में, 15 दिन में, एक मास में धीरे 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 आपका जो गुस्सा है वो कम होता हुआ नजर आता है। ऐसे निरंतर अभ्यास करते जाएंगे, एक समय ऐसा आएगा आप बिल्कुल क्रोध मुक्त होंगे, क्योंकि ओरिजिनलिटी में आप ले आ रहे हैं अपने आप को, ये जो अक्वायर्ड बातें हैं उसको आप मिटा रहे हैं। बार बार पॉजिटिव, बार बार अपने ओरिजिनलिटी में लाना मन को, ये है मन को कंट्रोल करना या फिर मेडिटेशन करना। और दूसरी बात, दूसरा जो ऑर्गन है वो है बुद्धि। बुद्धि से हम निर्णय लेते हैं, परखते हैं, एनालाइज करते हैं, चूज करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, ये सारे बुद्धि का काम है। विचार तो बहुत सारे आते हैं, लेकिन एक बार डिसाइड कर लिया तो फिर वही विचार चला। जैसे आपको यहां आना था, आपको निमंत्रण मिला माउंट आबू आने की, ज्ञान सरोवर आने की, तो फिर बहुत सारे विचार चले होंगे ना कि जाना है कि नहीं जाना, उस टाइम पे मैं फ्री हूं नहीं हूं, क्या हूं कैसे हूं, जान बहुत सारे विचार चले, है ना। जैसे ही आपने डिसाइड किया कि मुझे जाना है, तो फिर ये सारे जो दूसरे विचार थे वो फिर थम गए। फिर एक ही विचार चला कि मुझे जाना है, उस अनुसार फिर वो कर्म में लेके आए, रिजर्वेशन कराया, फिर यहां तक आप चले आए, ये कर्म में परिवर्तन हो गया। ऐसे बहुत सारे विचार चलते हैं, लेकिन जैसे ही निर्णय किया तो फिर वो कर्म में परिवर्तन हो जाता है। तो इसीलिए कहते हैं मन और बुद्धि दोनों जरूरी हैं। लेकिन क्या है मन और बुद्धि, क्या है? मन घोड़ा है और बुद्धि घुड़सवार है। मन ऐसे हमेशा कहते हैं ना, मन बहुत घोड़ा है, ए नॉटी हॉर्स है, वो भागता रहता है, उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, कहते हैं ना। लेकिन हम यहां कहते हैं मन घोड़ा, भले यहां कह रहे मन घोड़ा है, लेकिन घोड़े पर सवार कौन है? बुद्धि है। घुड़सवार को पता है कहां जाना है, अंतिम जो लक्ष्य है उसको पता है मुझे कहां जाना है, और घुड़सवार के पास पावर है, शक्ति है कंट्रोल करने की। जब हम बुद्धि, मन और बुद्धि से मेडिटेशन करना शुरू करते हैं तो मन क्लीन होना शुरू हो जाएगा, नेगेटिव और वेस्ट कम होता जाएगा, और बुद्धि में क्लैरिटी आती जाएगी। मन क्लीन और बुद्धि क्लियर होता जाएगा। बुद्धि जब क्लियर नहीं होगा ना तो कंफ्यूजन है, यहां जाना है, यहां जाना है, ये करना है, वो करना है, कंफ्यूजन है। बुद्धि के अंदर वो ताकत है, क्लैरिटी है, तो फिर हम सही कर्म कर सकते हैं। जब हम कर्म करते हैं वो संस्कार बन जाता है। वैसे संस्कार हम पांच प्रकार के संस्कार कहते हैं। जब एक छोटा बच्चा पैदा होता है, जो कोई बच्चे पैदा होते हैं गरीब घर में, कोई बच्चे पैदा होते हैं गोल्डन स्पून इन द माउथ, कोई बच्चे जन्मते ही बीमार है, कोई बच्चे तंदुरुस्त पैदा होते हैं, तो ये अंतर क्यों है? कौन डिसाइड करता है कौन किस घर में जाएंगे करके? कौन डिसाइड करता है? भगवान वहां ऊपर करके बैठ करके कहेंगे तुम यहां जाओ, तुम वहां जाओ, तुम यहां जाओ, कहेंगे? है ना, भगवान नहीं बेचते, अपने ही कर्मों के आधार से हम जन्म लेते हैं। जब बच्चा पैदा हुआ, एक घंटा या एक दिन का जो बच्चा है, उसके अंदर कौन से संस्कार है? एक दिन का बच्चा है, उसने कुछ कर्म ही नहीं किया है अभी इस जन्म में, तो वो कौन से संस्कार है उसके अंदर? उसके अंदर पास्ट बर्थ के संस्कार, पूर्व जन्म के संस्कार है। इसके आधार से उसने उस घर में जन्म लिया है। जैसे जैसे बच्चा पैदा बड़ा होता है, उसके अंदर फिर उसके जो जीन्स हैं, उसके पेरेंट्स के जो जीन्स हैं, पेरेंट्स के जो संस्कार है, वो बच्चे में एडअप होना शुरू होता है, पेरेंटल संस्कार है। और जैसे जैसे बड़ा होता है बच्चा, फिर जैसे वो कंपनी, जो वातावरण है, जिस समाज में वो पल रहा है, जिन लोगों के साथ वो खेल रहा है, कूद रहा है, या बात कर रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है, देख रहा है, समझ रहा है, जो इन कर्मेंद्रियों से वो ले रहा है कंपनी, इसलिए कहते हैं ना, मैन इज नोन इज बाय हिज कंपनी, बाय द कंपनी ही कीप्स, है ना। जिसके संगत में वो आता है, उसका जो संस्कार है, तो वो एडअप होना शुरू होता है। और फिर नेक्स्ट है, भले कितने भी है, लेकिन मैं अगर दृढ़ता से मैं सोचूं कि नहीं, मुझे वो परिवर्तन करना, ये मेरे अंदर नेगेटिव है, ये गलत है, मैं मुझे परिवर्तन करना है, वो मैं परिवर्तन कर सकती हूं, क्योंकि मैं दृढ़ता के आधार से मैं उसको परिवर्तन कर सकती हूं। और लास्ट है एटर्नल, अनादि अविनाशी संस्कार, जो शुद्ध संस्कार है, आत्मा का पवित्र, कोई दाग धब्बा लगा हुआ नहीं है, शुद्ध संस्कार, आत्मा का ओरिजिनल संस्कार वो है। लेकिन अभी पुरुषार्थ करके क्यों मेडिटेशन करना है, क्यों राज्यों का अभ्यास करना है? केवल मन की शांति के लिए नहीं, क्योंकि आप आधा घंटा मेडिटेशन में बैठेंगे तो हाँ, बहुत शांति की अनुभूति होगी आपको, क्योंकि वातावरण ऐसा है, कमेंट्री ऐसा मिलता है, आपको मन को डायरेक्शन दे रहे हैं, आधा घंटा आपको बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन बाद में जैसे ही कर्म में आना शुरू, जैसे आप यहाँ तीन दिन है, अच्छा लग रहा है, आपका व्यवहार भी हर एक के साथ अच्छा है, क्योंकि वातावरण भी ऐसा है, लेकिन जैसे ही आप कर्म क्षेत्र पर जाएंगे क्या होगा? कर्म क्षेत्र पर जाएंगे तो क्या होगा? प्रॉब्लम, समस्याएं, उलझने, ये है, वो है, टेंशन्स, वो फिर से, वो जो नेगेटिव संस्कार मेरा था वो फिर से उभर आएगा, तो इसको शांति नहीं कहेंगे, है ना। तो भले शांति का अनुभव करें, लेकिन अल्टीमेट जो लक्ष्य है, अंतिम लक्ष्य है मेडिटेशन करना, करने का, वो है संस्कारों में परिवर्तन लाना। कर्म संस्कारों में परिवर्तन कैसे आएगा? कर्मों में परिवर्तन लाते लाते फिर संस्कारों में परिवर्तन आएगा। गुस्सा आया, लेकिन मुझे समझ आए कि मुझे गुस्सा नहीं करना है, धीरे 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 मैं अपने व्यवहार में गुस्सा कम करती गई, फिर वो संस्कार बनता गया। लॉन्ग टर्म हमेशा हमें सोचना है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट। तो इसलिए मेडिटेशन का लक्ष्य है केवल शांति और सुख की अनुभूति नहीं, लेकिन वो सारे जो ओरिजिनल संस्कार है वो नेचुरल हो जाए। मेरा स्नेह के संस्कार, शांति के संस्कार, पवित्रता के संस्कार, सब नेचुरल हो जाए, वो है योग का लक्ष्य। तो इसीलिए जैसे जैसे हम ये करते जाएंगे, अपने मेमोरीज में, अपने हैबिट में, ये सब कुछ पॉजिटिविटी भरता जाएगा, संस्कारों में परिवर्तन आता जाएगा ऐसे। पूरा जो हमने समझा अभी, मन, बुद्धि और संस्कार। मन में विचार क्रिएट करते हैं, विचारों की उत्पत्ति होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, वेस्ट और साधारण या आवश्यक। फिर जैसे जैसे हम सोचते जाएंगे, फिर निर्णय एनालाइज करते हैं, घोड़ा और घुड़सवार, है ना, ये बुद्धि। जैसे बुद्धि में निर्णय करते हैं, फिर वो कर्मों में परिवर्तन होगा, कर्म करते करते वो संस्कार बन जाता है ना। फिर संस्कारों का प्रभाव फिर मन पर पड़ता है ना। तो ये साइकिल है, ये साइकिल है। संस्कारों का प्रभाव मन पर पड़ेगा ही। अगर मुझे मेरा गुस्से वाला संस्कार है तो मेरा सोच भी वो गुस्से वाला शुरू होता है। तो इसीलिए ये सर्कल कहां से काटेंगे, क्योंकि लाइन अगर हो, अगर मेरा पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव संस्कार है तो वो ठीक है, नेगेटिव संस्कार है, गुस्से वाला संस्कार है, तो कहां से हम परिवर्तन शुरू करेंगे, कहां से परिवर्तन शुरू करेंगे, क्योंकि ये साइकिल में चल रहा है। सोच का प्रभाव बुद्धि पर, बुद्धि का प्रभाव संस्कार पर, फिर संस्कार का प्रभाव फिर मन पर पड़ रहा है, है ना। तो ये साइकिल है, तो साइकिल है तो कहां से शुरू करेंगे, कुछ परिवर्तन लाना है तो अपने अंदर मन से। लेकिन मन के ऊपर तो प्रभाव संस्कार का है, पहला वाला एक ये देखा था हमने मन के ऊपर, एक ये देखा था ना, ये सेंसरी इनपुट्स जो दिखा रहा है, जो हम सोच देखते हैं, इन आंखों से जो ले रहे हैं, कानों से जो ले रहे हैं, ये है मन के लिए दरवाजे, राइट। संस्कार तो, संस्कारों का प्रभाव तो है ही है, नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, जो ये सेंसरी इनपुट्स है, जो देखते हैं उसका प्रभाव पड़ता है, जो सुनते हैं उसका प्रभाव पड़ता है, और तीसरा दरवाजा है मन का, जैसा भोजन जैसा अन्न वैसा मन कहते हैं, है ना। इन तीनों दरवाजों को अगर कंट्रोल करते हैं, इसके ऊपर, इसके आगे पैरादार को अगर खड़ा कर देंगे, तो जो चाहिए वही अंदर आए, तो उसका प्रभाव मन पर पड़ेगा। इसीलिए संघ का महत्व बहुत है, जैसा संघ वैसा रंग, है ना। तो इसीलिए यहां अभी संघ किसके साथ करना है, संग किसके साथ करना है, वो एक्सटर्नल संग जिसका भी हो, नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है। तो इसलिए सबसे पहले अपने आप के साथ, अपना संग खुद का, खुद के साथ करना बहुत जरूरी है। इसलिए कहते हैं योगी वो है जो अंतर्मुखी है। पहला स्टेप ही है अंतर्मुखी होना, खुद को समझना, खुद को देखना, आत्मा को समझना, मैं क्या सोच रही हूं, क्यों सोच रही हूं, क्यों ऐसा संस्कार है, ये समझना, ये है अंतर्मुखी बनना। तो ये जब हम करते जाएंगे, आत्मिक स्मृति, सोल कॉन्शियसनेस केवल हम बैठ करके ना करें, चलते फिरते कर्म करते हुए भी इस स्मृति से हम कर्म करें कि मैं आत्मा इस शरीर के द्वारा कर्म कर रही हूं, तो कर्म करते हुए भी हम सोल कॉन्शियसनेस अनुभव कर सकते हैं, आत्मिक स्मृति का अभ्यास कर सकते हैं। क्यों करना है आत्मिक स्मृति का अभ्यास, क्योंकि देह भान से क्या होगा और आत्म भान से क्या होगा, देह भान से कंपैरिजन शुरू हो जाएंगे, ये अच्छा है ये बुरा है, मैं अच्छी नहीं हूं, कंपैरिजन्स शुरू होंगे। लेकिन सोल कॉन्शियसनेस से एक्सेप्टेंस, वो आत्मा जो है जैसे है उसको मैं एक्सेप्ट करना शुरू करते हैं, और बॉडी कॉन्शियसनेस से डिवीजन आएगा, या अमेरिकन है, ये फलाना धर्म का है, ये है, डिविजन्स आएंगे, लेकिन आत्मभान में यूनिटी, एकता, क्योंकि हर एक एक जैसे हैं, कोई काला पीला गोरा कोई है ही नहीं, जैसे आकाश में तारे दिखते हैं एक जैसे हैं सब तारे, लेकिन कोई किसी की रोशनी ज्यादा है किसी की रोशनी कम है, ऐसे ही हम सभी आत्माएं धरती के सितारे हैं, है ना। और फिर देह भान में कर्मेंद्रियों के वशीभूत हो जाते हैं, और आत्मभान में कर्मेंद्रियों पर हम राज्य कर सकते हैं। देह भान में मृत्यु का डर होगा, आत्मभान में मुझे पता है एक ना एक दिन मुझे जाना है, एक टेम्प्रोरी है ये, बस मुझे जाना है। तो लास्ट है, जैसे हम किसी का इंट्रोडक्शन देते हैं या एप्लीकेशन में भरते हैं ना अपना, कोई नौकरी के लिए किसी का, या फिर कहीं भी कुछ सब्सक्राइब करना हो, या फिर कहीं मुझे अंदर जाना या करना है, तो फिर हम फॉर्म फिलअप करते हैं। तो जैसे अपने शरीर का या फिर अपने लाइफ का जैसे बायोडेटा है, आत्मा का बायोडेटा क्या है, नाम क्या है, आपका नाम क्या है, आत्मा, रूह कहे, आत्मा कहे, स्पिरिट कहे, प्राण कहे, लाइट कहे, एनर्जी कहे, है ना, अलग अलग भाषा में अलग अलग चीजें हम कहते हैं, लेकिन नाम वो है। और फॉर्म मना रूप, फोटो चिपकाते हैं ना उस फॉर्म में, तो रूप क्या है आपका, कैसे दिखते हैं आप, कैसे दिखते हैं आप, बिंदु स्वरूप, अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप, जो इन आंखों से जो दिखाई नहीं देता, अति सूक्ष्म ज्योति है। और आपके माता पिता का नाम परमात्मा, वो कल या फिर आज शाम के सेशन में समझ में आएगा। और आपका एड्रेस क्या है, एड्रेस क्या है, परमधाम है। अभी कहां है आप, अभी कहां है आप, उसमें लिखते हैं ना, एक टेम्प्रोरी एड्रेस है, एक परमानेंट एड्रेस है ना। ये है मेरा टेम्प्रोरी एड्रेस। टेम्प्रोरी एड्रेस क्यों है, ये परमानेंट एड्रेस नहीं हो सकता, ये टेम्प्रोरी एड्रेस है या परमानेंट एड्रेस है, टेम्प्रोरी है क्यों, एक दिन तो जाना पड़ेगा ना, इस शरीर को त्यागना पड़ेगा, एक दिन अपना अपना टाइम आएगा निकलने का, है ना, इसीलिए ये टेम्प्रोरी एड्रेस है। परमानेंट एड्रेस जहां से आए थे, अकेले आए थे अकेले जाना है, ऊपर से आए थे ऊपर जाना है, परमधाम अपना परमानेंट एड्रेस है। और डेट ऑफ बर्थ आपका अविनाशी है, है ना। डेट ऑफ बर्थ जो लिखते हैं वो शरीर का है ना, आत्मा का कोई डेट ऑफ बर्थ नहीं है, वो अनादि अविनाशी एटर्नल है, है ना। और क्वालिफिकेशन क्या है आपका, क्वालिफिकेशन क्या है, क्वालिफिकेशन मना क्या है, जो करना जानते हैं, जैसे हम, अगर मैं इंजीनियरिंग पढ़ी हूं तो इंजीनियरिंग का काम आता है, डॉक्टरी पढ़े हैं तो डॉक्टरी का काम आता है ना, जो हमने पढ़ाई की है वो कर्म करना आता है। तो आत्मा को क्वालिफिकेशन क्या है, अच्छे कर्म करना, ये जो सातों ही गुण है ना, आत्मा के क्वालिफिकेशंस हैं, क्योंकि आत्मा के ओरिजिनल क्वालिटी है वो सातों ही गुण, स्नेह, शक्ति, आनंद, ये सब कुछ आत्मा के क्वालिफिकेशन है। इस चीज से हमें स्नेह की अनुभूति होगी, शक्ति की अनुभूति होगी इस माइक से? होगा नहीं। किससे होगा? किससे होगा? लोगों से जब मिलते जुलते हैं, आत्मा के जो क्वालिटीज है हम उसको एक्सचेंज करते हैं, राइट? तो आत्मा की ये सातों गुण जो है वो क्वालिटी है। लोगों से ही हम उन सातों ही गुणों का अनुभव कर सकते हैं। हाँ, परमात्मा से अनुभव कर सकते हैं, लेकिन इंसानों से हम अनुभव कर सकते हैं। आत्मा के ओरिजिनल क्वालिफिकेशन वो है। और ऑक्यूपेशन क्या है? ऑक्यूपेशन क्या है? अच्छे कर्म करना। और ऑक्यूपेशन क्या है? स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन लाना। याद रहेगा ये ऑक्यूपेशन? या फिर ये रहेगा, मैं आर्टिस्ट हूं, मैं डायरेक्टर हूं, मैं फलाना हूं, ये याद रहेगा आपका ऑक्यूपेशन? वो ऑक्यूपेशन इस जन्म का है। लेकिन आत्मा का ओरिजिनल ऑक्यूपेशन क्या है? आत्म परिवर्तन से दूसरों को प्रेरणाएं देते जाना, एक्सपीरियंस करते रहना और दूसरों को भी एक्सपीरियंस कराते जाना। किसी ना किसी लक्ष्य से ये जिंदगी मिली हुई है। हर एक के जिंदगी के पीछे एक लक्ष्य होता है। आपका जन्म क्यों हुआ है? कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस करने और एक्सपीरियंसेस देने। आपका जन्म इसलिए नहीं हुआ है क्या कि आप आर्टिस्ट बने? आर्टिस्ट बनने के दौरान जो आप जीवन में अनुभव कर रहे हैं और अनुभव करा रहे हैं दूसरों को, ये है जिंदगी का लक्ष्य। क्या हम अनुभव मेमोरीज क्रिएट करते हैं, क्या हम ले रहे हैं और क्या हम दे रहे हैं, वो महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए ऑक्यूपेशन है स्व परिवर्तन से दूसरों को इंस्पायर करना या विश्व परिवर्तन लाना। ये है संपूर्ण परिचय स्वयं का। अब रूबरू हो गए अपने आप के साथ, तो अभी बार बार ये, जब तक आप यहां रहेंगे, बार बार आप याद दिलाते रहना अपने आप को, आप कौन हैं, आप कहां बैठे हैं, है ना? क्योंकि इस वातावरण में वो अनुभव आप कर सकते हैं, क्योंकि वही बातें आप सुन रहे हैं, वही बातें आप महसूस यहां कर रहे हैं। अगर 3 दिन ये अनुभव कर ले तो फिर एक प्रकार से पक्का हो जाएगा, वापस जाने के बाद भी ये जो प्रैक्टिस है अपने आप को आत्मा समझ करके दूसरों को आत्मा देखना, इससे क्या फायदा होगा? इससे क्या फायदा होगा? क्या फायदा होगा उससे? आत्मा समझ करके आत्मा देखने से फायदा क्या होगा? सब कुछ सुख का अनुभव कराएंगे। और दूसरी बात यह है कि बहुत अलग अलग आप रोल जो निभा रहे हैं सुबह से शाम तक। अगर आप एक महिला है, आप घर में गृहिणी भी है, पत्नी भी है, माँ भी है, बहू भी है, और अगर आप कोई आर्टिस्ट है तो वहां जो नौकरी पर जो भी प्रोफेशन पे जा रहे हैं आर्टिस्ट है, तो अलग फ्रेंड्स के साथ फ्रेंड्स हैं, तो अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग संबंध आप निभा रहे हैं। जब संबंध निभा रहे हैं तो, लेकिन मैं, आप ये सोचिए कि मैं आर्टिस्ट हूं, उसके साथ मैं गहराई से आइडेंटिफाई कर रही हूं, बार बार ये मैं सोच रही हूं मैं एक डांसर हूं, मैं डांसर हूं, मैं डांसर हूं, मैं आर्टिस्ट हूं, मैं आर्टिस्ट हूं, तो इतने सारे जो मेरे रोल्स हैं, पत्नी का, माँ का, कोई और भी होगा, बहुत सारे जो रोल है, उन सभी रोल को छोड़ करके एक पर्टिकुलर रोल के साथ मैं अपने आप को गहराई से आइडेंटिफाई कर रही हूं, तो फिर क्या होगा? दूसरे जो रोल्स हैं उसको मैं जस्टिस नहीं दे सकती हूं, न्याय नहीं दे सकती हूं, उसको मैं जो करना है मुझे उस रोल में जो करना है वो अच्छी तरह मैं कर नहीं पाऊंगी। जैसे स्टेज पे आप ड्रामा कर रहे हैं लेकिन बार बार आप सोच रहे हैं घर का, मैं एक माँ हूं मुझे वो करना है, लेकिन स्टेज पे कोई और रोल मिला हुआ है, उस रोल को करने के लिए उस फीलिंग में आना बहुत जरूरी है ना। अगर आपको राम, श्री राम का रोल मिला हुआ है तो वो उस रोल के फीलिंग में पूरी तरह आकर के वो जब आप रोल निभाएंगे तो फिर दूसरों को वो अनुभव होगा। ये सोचे कि नहीं मैं एक एग्जीक्यूटिव हूं, मैं ये हूं, लेकिन ये, तो फिर पूरी तरह उस रोल में नहीं आ सकते हैं। इसीलिए जब मैं ये सोचती हूं कि मैं आत्मा हूं, ये केवल मेरा रोल है, मैं डांसर नहीं हूं, डांसिंग मेरा रोल है। मैं मां नहीं हूं, मां का रोल है इस बच्चे के साथ मेरा। अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग रोल निभा रहे हैं आप, पात्र निभा रहे हैं, लेकिन आप है कौन? आप है कौन? आत्मा है। कभी भी ये नहीं सोचता मैं एक माँ हूं, मैं एक पत्नी हूं, मैं एक डांसर हूं, नहीं, मैं एक आत्मा हूं, पत्नी का रोल निभा रही हूं, मैं आत्मा हूं, माँ का रोल निभा रही हूं, मैं आत्मा हूं, डांसर का रोल निभा रही हूं। ये पक्का जब हो जाएगा ना तो सही समय पर सही रोल आप एक्यूरेट निभाएंगे, नहीं तो फिर वहां से यहां कंफ्यूजन होने के कारण से फिर कहीं भी आप नहीं रह पाते हैं। ठीक है, ये है बेनिफिट आत्मिक स्मृति और आत्मिक दृष्टि का। ये अध्यात्मता कोई और ऐसी चीज नहीं, ये प्रैक्टिकल जीवन में धारण करने की बातें हैं अध्यात्मिकता, है ना। तो चलिए दो मिनट हम परमात्मा वो स्मृति में बैठे, गीत बजा दीजिए, मैं आत्मा हूं।